नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रूपये की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण लू की स्थिति को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्रित करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। उन्होंने 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया और बागवानी विभाग द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए किलो तय किया गया है। इससे अब किसान को एक निश्चित आय की गारंटी मिली है। वे विश्व मधुमक्खी दिवस पर हरियाणा उद्यान विभाग द्वारा पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालकों को अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव से राहत दिलाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है।
हरियाणा सरकार लगातार किसान को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत कर रही है। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी भी ई क्षतिपूर्ति के माध्यम से भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और इसी प्रकार से हमारा सब्जी का किसान, अगर उसको बाजार में दाम कम मिलते हैं तो उस घाटे की भी भरपाई करने का काम सरकार करती है। हमने 16 अगस्त 2025 को पंचकुला की भूमि पर यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम करेगी। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ आप तक पहुंचेगा।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मधुमक्खी पालन नीति के तहत वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़ाकर 7,750 करने और शहद उत्पादन 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के बॉक्स, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक ढंग से चलाने में सहयोग करने के लिए कुरुक्षेत्र के रामनगर में इसराइल की तकनीक पर आधारित देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस केंद्र पर लगभग 800 टन शहद का व्यापार हो चुका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मधुक्रांति पोर्टल पर हरियाणा के 3,000 से अधिक मधुमक्खी पालक रजिस्टर्ड हैं। मधुमक्खी पालकों के रजिस्ट्रेशन करवाने में हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए मधुमक्खी पालकों द्वारा शहद और शहद से बने उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। इससे पूर्व हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने शहद उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने को लेकर कहा,
कुछ महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये साथी आए थे और उनकी एक दिक्कत थी, वो भी दूर कर दी। तो क्योंकि MSP तय कर दिया और उससे कम बिकेगा तो भाव अंतर मिलेगा। वैसे ये योजना हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसमें सबसे ज्यादा किसानों की मदद करता है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने आज राज्य के श्रमिकों एवं श्रम नियुक्तियों को आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया। श्री विज ने बताया कि ये ऐप डिजिटल क्रांति के तहत विकसित किया गया एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जो श्रमिकों और नियुक्ताओं के बीच सीधा, पारदर्शी और त्वरित संपर्क स्थापित करेगा। ये ऐप हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीन भाषाओं में संचालित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रमिक एवं नियोक्ता सरलता से इसका लाभ उठा सके। श्री विज ने कहा कि श्रम मित्र ऐप दैनिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में कार्य करेगा और आने वाले समय में पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। श्रमिकों को काम की तलाश में घंटों लेबर चौक पर खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज अंबाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। श्री अनिल विज उनके पास खुद ज्ञापन लेने पहुंचे और कर्मचारियों ने मंच से ऊर्जा मंत्री के हक में नारे लगाए। मीडिया से बातचीत में श्री अनिल विज ने कहा,
तो मुख्य बातें रखी एक एक्सग्रेशिया की, उसमें कहा कि पांच साथी काम करते हुए अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन उनको एक्सग्रेशिया इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एक्सग्रेशिया की कंडीशन है पांच साल। तो मैं कोशिश करूंगा कि पांच को घटाकर दो साल कर।
श्री विज ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ को पूरा करने के लिए वे काम शुरू कर चुके हैं और कुछ को पूरा करने के लिए वे और जोर लगाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। कांग्रेस ने जींद में भी आज इन्हीं मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन अभी लू का चलना जारी रहेगा।
जो लू की स्थिति बनी हुई है ये कंटिन्यू करेगी, खासकर जो वेस्टर्न पार्ट पंजाब, हरियाणा और पंजाब के बाकी क्षेत्रों में कंटिन्यू करेगी। और टेम्परेचर जो है वो 46.9 रोहतक में हरियाणा में हाईएस्ट है, फ्रीकोट में 47 डिग्री सेल्सियस। ये जो है साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है पंजाब के, यहाँ पे लू की स्थिति है और ऑरेंज अलर्ट 48 घंटे के लिए। इसके बाद कुछ इसमें कमी आ सकती है कुछ, क्योंकि कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का, कुछ विंडी वेदर का चांसेस लग रहा है कल के बाद, उससे स्थिति में सुधार आएगा। हो सकता है कि बीच बीच में आज और कल भी कुछ जो है हल्का सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक दो जगह पे पंजाब में हो।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1.2 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण लू की स्थिति को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।